الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، پچھلے چند دنوں سے اس موضوع پہ گفتگو ہو رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک قرآنی اصول بنا دیا کہ جن چیزوں کو ہم کراہت کرتے ہیں کئی مرتبہ اس میں خیر ہوتی، اور کئی مرتبہ جن چیزوں سے ہم محبت کرتے ہیں اس میں اللہ نے شر رکھ دی. اور ہم نے ایسی بہت ساری چیزوں کا تذکرہ پچھلی چند مجالس میں کیا کہ عام طور پہ انسان کا دل ان چیزوں سے تنگ ہوتا ہے مگر ان چیزوں کو کر لینے میں خیر ہوتی. دینی اعتبار سے قرآن اور حدیث کے حوالے سے بھی خیر اور انسانی تجربے کے حوالے سے بھی خیر ہوتی ہے. چنانچہ ہم نے تذکرہ کیا کہ یہ دنیا کی ریٹ ریس ہے، دنیا کا جو مقابلہ ہے، مال کا جو مقابلہ ہے، دل تو یہی چاہتا ہے کہ یہ مال میرے پاس خوب ہو، فیوچر سیکیور ہو، مگر اس دنیا کی محبت میں اللہ نے شر رکھ دیا ہے. اسی طرح طبیعت کے اندر شہوت سے متعلق گناہ کرنے کا ایک جذبہ، خاص طور پہ مردوں میں زیادہ، مگر اس جذبے کو اگر حلال طریقے سے نہیں، اس جذبے کو اس کو تسکین دیں گے تو اس میں بھی اللہ نے شر رکھ دی. اسی طرح انسان کے لیے کئی مرتبہ دوسروں کو معاف کرنا بڑا مشکل، تو دل تو تنگ ہوتا ہے دوسروں کو معاف کرنے سے مگر دوسروں کو معاف کر دینے میں اللہ نے خیر رکھ دی. اسی طرح خدمت کرنے میں، کسی کے لیے بلا معاوضہ اپنا وقت، اپنی جان، اپنا مال لگانے میں انسان کا دل تنگ ہوتا ہے مگر اس میں بھی اللہ نے بہت بڑی خیر رکھ دی، آخرت کی بھی خیر اور دنیا کی بھی خیر. اور اسی طرح کل کی مجلس میں ہم نے تذکرہ کیا کہ کئی مرتبہ مشائخ کی خدمت میں آنا اس سے دل تنگ ہوتا ہے، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. کئی مرتبہ سالک اس لیے نہیں آتا ہے کہ جی شیخ کو جا کے اپنے برے حالات بتانے پڑتے ہیں، یا اگر نہیں بتاؤں گا تو بھی پریشان رہوں گا کہ اصلاح کے لیے آیا ہوں اور قابل اصلاح چیزیں بتا نہیں رہا، یا کئی مرتبہ سالک یہ پریشان ہوتا ہے کہ جی میرے اوپر بوجھ آ جائے گا اعمال کرنے کا، کیونکہ مشائق کا تو کام ہی ہے ایک دوسروں کو اعمال پہ ڈالنا ہے. تو کچھ لوگ اس سے بچتے ہیں اور کئی مرتبہ دل تنگ ہوتا ہے تو انسان کہتا ہے اچھا تھوڑا ٹھہر کے جاتا ہوں. تو دل پہ بوجھ ضرور ہوتا ہے کہ انسان کو بہرحال زندگی کی ترتیب کو کچھ نہ کچھ تبدیل کرنا پڑتا ہے مشائخ کی صحبت میں جا کے، اس لیے دل تنگ ہوتا ہے. اور کل کی مجلس میں ہم نے مختلف اگزامپلس بھی دیے کہ کس کس طرح سالکین جو ہیں وہ اوائڈ کرتے ہیں، مگر خیر اس میں اتنی کہ امام احمد بن حنبل جیسے بزرگ جو ہیں، ہزاروں لوگوں کے استاد، جو اپنے وقت کے شیخ تھے، وہ بھی فرماتے تھے کہ جو اللہ والا ہے اس کی صحبت اختیار کرنا یہ میرے لیے لازم ہے. इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का मशहूर कौल है कि मैंने सूफिया की सोहबत बड़ी इख्तियार की और उनसे मैंने ये चीज सीखी कि अगर तुम अपने वक्त को अच्छे कामों में नहीं लगाओगे तो ये जो तुम्हारा नफ्स है वो तुम्हें बुरे कामों में। तो इसमें खैर है, कभी तो इतने दीन वाले, इतने बड़े बुजुर्ग, इतने बड़े उलमा भी कहते हैं ये सोहबत इख्तियार करना ये मेरी जिंदगी का सबसे अहम काम। आज की इस मजलिस में नेक सोहबत इख्तियार करने से मुतालिक तीन खैरें बयान कर, क्यों इसमें खैर है। और पहली चीज, नेक सोहबत के जरिए से इंसान को नेकी में इस्तेकामत मिलती है। ये जो इंसान कई मरतबा चंद दिन तक तो नमाज पाबंदी से पढ़ रहा है, फिर नमाजों में गैप आ जाता है, या कई मरतबा चंद दिन तक फजर पाबंदी से पढ़ रहा है, फिर फजर में गैप आ जाता है, या कुछ लोग मामूलात पाबंदी से कर रहे थे मगर फिर गैप आ गया। ये जो गैप आना है, जो शख्स मशाइख की सोहबत में पाबंदी से आ रहा होता है, उसकी ये मामूलात में, इबादत में जो तातुल है वो खत्म हो जाता है। मशाइख की इबारतों में लिखा हुआ है और एक नहीं कई सारे बुजुर्गों की ये कौल है कि जो मशाइख के बताए हुए मामूलात हैं ये वही सालिक करता है जो शेख की खिदमत में आना जाना रखता है। चुनांचे ये इबारत इस आजिज ने भी पढ़ी तो जहन में आज से 20-22 साल पहले ये ख्याल आया कि कोई तो होगा ना कि जो नहीं आ रहा होगा शेख की खिदमत में मगर अमाल पूरे कर रहा होगा। तो बड़ों ने इजाजत दी थी लोगों को इस्लाह के ताल्लुक में शामिल करने की, तो जो लोग शामिल हो जाते उनमें से अगर कोई नहीं आता ना काफी अरसे तक, जैसे 2-4-5 महीने से नहीं आए, फिर मुलाकात हुई तो उससे जरूर ये आदत इस आजिज ने बना ली कि पूछो मेरे अमाल कैसे हो रहे हैं। तो पहले तो जिनसे पूछा तो उनकी तादाद शायद सैकड़ों में और सैकड़ों में होगी, अब जरूर ये तादाद हजारों में है। मुझे लगता है शायद 10,000 से ऊपर लोग होंगे जिनसे ये आजिज ये सवाल कर चुका होगा। अभी तक 20-25-30 साल का अरसा है, तो इन हजारों लोगों में जिनसे इस आजिज ने पूछा कि जी आपके नेक आमाल कैसे चल रहे हैं, आपके मामूलात जो बताए हैं वो कैसे चल रहे हैं, यानी जिन्होंने आने में तातुल किया, इन हजारों में से एक बंदा नहीं मिल सका जो ये कहे कि जी मैं आ जा तो नहीं रहा कई महीनों से मगर मेरे मामूलात पूरे हो रहे हैं, ऐसा एक बंदा नहीं। तो ये मशाए की इबारत बिल्कुल सही, अल्लाह वालों के बताए हुए आमाल या नेक आमाल जो जनरली इंसान करता है उनकी पाबंदी ऐसे शख्स को ही नसीब होती है जो नेक सोहबत में आने जाना रखता है। आजकल का जो शैतान है ना बड़ा स्ट्रांग हो चुका है, नेक आमाल पे बैठने देता नहीं है, किसी को इंटरनेट के जरिए से गिराएगा, किसी को लड़ाई झगड़े के जरिए से गिराएगा, किसी को कहीं फंसाएगा तो किसी को कहीं फंसाएगा। तो इंसान जो है ऐसी सिचुएशन में कई मरतबा इंसान आ जाता है कि नेक अमाल करना क्या, नेक अमाल सोचना भी हो, यानी वही शख्स जो इतने पाबंदी से नेक अमाल कर रहा होता है वो कहता है कि इस वक्त तो इस तरफ सोच भी नहीं सकता। जो मशाइख की सोहबत में पाबंदी से आता है उसकी जिंदगी में नेक आमाल के एतबार से स्टेबिलिटी आ जाती है। चुनांचे एक साहब खुद फरमाते हैं कि आज से 45 साल पहले मैंने हजरत ख्वाजा अब्दुल मालिक सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह से बैत की और उनकी सोहबत में पाबंदी से जाता था। हजरत ने मुझे फरमाया कि तुमने हर रोज एक पारा कुरान पाक तिलावत करनी है। उन्होंने कहा कि 45 साल में एक दिन भी एक पारे की तिलावत कजा नहीं, 45 साल में। अल्लाह, तो शेख की सोहबत में पाबंदी से आते हैं, वो नेक आमाल पाबंदी से करते। जाहिरन ऐसा लगता है कि मशाइख की सोहबत जो है वो खैर कसीर वाले कामों में भी बहुत ही खैर कसीर है, मगर दिल तंग होता जरूर है। इंसान को फिर जिंदगी की तरतीब चेंज करनी होती है, हालांकि मशाइख की पूरी कोशिश होती है कि किसी की जिंदगी की तरतीब नेकी पिलाने में उसको तकलीफ कम से कम हो, यानी उसकी जिंदगी की अंदर जो चेंज है वो कम से कम आए। हत्ता कि अगर कोई शख्स उसका जरिया आमदनी हराम है तो मशाइख ने कुलिया बताया कि जो बिल्कुल अभी आया है उसको ये भी ना कहो कि जी अपना जरिया आमदनी बदलो फौरन, बल्कि जब उससे मुनासिबत पैदा हो जाए तो मशाइख ने फरमाया कि जिसको कहा जाए कि अब दूसरा जरिया आमदनी ढूंढो, जब वो हाथ में आ जाए तो ये छोड़। तो मशाए कोई बहुत जोरदार जिंदगी के अंदर तब्दीली लाने की बजाय बड़ी हिकमत से हर सालिक को उसकी तबीयत के मुताबिक नेकी पे लाने की कोशिश, ये मशाए की सैकड़ों सालों से तरतीब रही, मगर सालिक का दिल फिर भी तंग होता है कि पता नहीं क्या करना पड़ेगा। तो इसलिए वो इस सोहबत में आने से घबराता है, मगर अल्लाह ने इसमें खैर रख दी है। तो एक खैर तो यह है कि नेक आमाल पे इंसान को इस्तकामत नसीब होती, दूसरी खैर ये बहुत ही टेक्निकल पॉइंट कि इंसान का दर्जा अल्लाह के सामने बढ़ जाता है, और तीसरी चीज कि इस नेक सोहबत की बरकत से इंसान बड़े बड़े गुनाहों के दलदल में जो फंसा होता है वो निकल आता है। इंशाल्लाह ये आखिरी दो पॉइंट्स जो है इसमें कल की मजलिस में इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह ताला हमें नेक सोहबत इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अन अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم
وعليكم السلام
السلام
ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.